Dong bekar.
तो हम थोड़ा यहाँ से कथा करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ का पूरा महिमा वगैरह सब जान के चलते हैं। तो जब कंप्लीट कर लीजिए फिर करते हैं। तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन लोकले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वफलं।
मतलब 7000 साल पुराना रूप से
7000 साल नहीं है पुराना, 5000 ना, 5000 साल बीता ना।
अच्छा 5000 बीते,
5000 साल पुराना ये।
और आगे आ जाओ तो गाड़ियाँ आवास में मेरे। तो हरे कृष्णा, हम लोग जो अभी जिस स्थान में आए हैं वृंदावन धाम में, एक्चुअली वृंदावन धाम जो है वो इस ये जो भौतिक ब्रह्मांड जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान एक्चुअली वृंदावन है। क्यों? क्योंकि वृंदावन जो है वो भगवान कृष्ण का घर है, है ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार भगवान कृष्ण ही इस बात को बताते हैं कि वृंदावन जो है वो मेरे से अभिन्न है, मेरे से अभिन्न है। तो एक बार की घटना है कि नारद मुनि ऐसा ही, नारद मुनि हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, किसी न किसी से मिलते रहते हैं हमेशा। तो उनको पता चला कि प्रयागराज के, उनके मन के अंदर ऐसा विचार आया कि प्रयागराज के इधर जाते हैं हम। प्रयागराज मतलब कौन? जो गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद है, वो प्रयागराज मतलब वो सारे तीर्थों के राजा, भगवान ने उनको बनाया था सभी तीर्थों के राजा। तो सभी तीर्थों के राजा होने के कारण सारे तीर्थ जो है ना वो क्या करते थे, वो उनको जाके साल में एक बार उनको कुछ भेंट देते थे, है ना। कोई हमारा राजा है तो कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति हमारे लिए जो है वो जाके हम उसको कुछ भेंट देते हैं ना। तो इसी प्रकार उनको सम्मानित करने के लिए कि प्रयागराज है जिसको भगवान ने सारे तीर्थों का राजा बनाया है, इस प्रयागराज को जाके सारे तीर्थ मिल के जाके साल में एक बार उनको कुछ ना कुछ भेंट दिया करते थे। तो फिर नारद मुनि गए तो उन्होंने उनको बोला कि आपको भगवान कृष्ण ने कितनी भगवान कृष्ण की कृपा है कि आपको प्रयागराज उन्होंने बनाया, सारे तीर्थों का राजा बनाया। तो नारद मुनि हमेशा कुछ न कुछ उठपटांग कुछ ऐसा करते रहता है कि कुछ घटित हो जाता है। तो उन्होंने एक्चुअली उद्देश्य यही था कि वो सभी तीर्थों के राजा है जो प्रयागराज ऐसा सोच रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। तो इस बात को प्रस्तुत करने के लिए नारद मुनि वहाँ पर गए थे। तो उन्होंने प्रयागराज को पूछा कि क्या तुमको सब तीर्थ देते हैं कर कर यार, जो भी गिफ्ट है तुमको भेंट देते हैं? हाँ सब तीर्थ देते हैं। तब नारद मुनि बोला कि क्या वृंदावन भी तुमको देता है कुछ भेंट? तो राजा को क्लियर हुआ कि नहीं, वृंदावन तो आज तक नहीं दिया। तब बोला फिर कहाँ, तो तुम संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों के राजा हुए, तुम तीर्थ राजा तो हुए नहीं क्योंकि तुमको वृंदावन तक कोई भेंट नहीं देता है। तो ये बात जो है और प्रयागराज के अंदर कंटिन्यू घूमने लगा और वो जाके फिर से भगवान के पास मिले, आपने मुझे सभी तीर्थों के राजा बनाया है, वृंदावन तो मुझे कभी भेंट देने के लिए आया नहीं। तो उस समय भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैंने तुमको सारे तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा नहीं बनाया था।
मेरा घर है
ये जो वृंदावन है, ये मेरा घर है। इसलिए वृंदावन और भगवान कृष्ण ये दोनों अभिन्न है, भगवान कृष्ण ही वृंदावन है ऐसा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, और वृंदावन में वही व्यक्ति आ पाता है जिसके ऊपर श्रीमती राधारानी की कृपा होता है। बिना श्रीमती राधारानी की कृपा के बगैर हम कभी भी वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। आप कितना भी अपना पहले से प्लान कर लो, कुछ न कुछ घटित हो जाएगा अगर नहीं आना रहेगा तो, कुछ न कुछ हो जाएगा,
कुछ
लेकिन अड़चन आ ही जाएगा। आप कितना भी प्रयास हो, आपके खुद के बलबूते खुद के प्रयास से कभी भी वृंदावन में आप आ ही नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वृंदावन में एंटर हो ही नहीं सकता है बिना राधा रानी की कृपा से, क्योंकि ये जो राधा रानी जब कृपा करेंगे हमारे पास तब जाके हम वृंदावन में, हम वृंदावन के बारे में जब सोचते हैं ना तो वो भी एक कृपा है श्रीमती राधा रानी का, कि हम वृंदावन के बारे में जो सोच रहे हैं, वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो इच्छा कहाँ से आई। कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम को सुनने में जितना फायदा मिलता है उतना ही हम श्रीमद् भागवत सुनने जा रहा हूँ करके ऐसा बोलते हैं तो भी फायदा उतना ही मिलता है, भले से नहीं जा पाए बट हमको जाना है करके, जाना है सुनने के लिए, ये इच्छा जो है ना, तो हमको वो भागवत सुनने का फल प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर अगर इस प्रकार की कुछ इच्छाएँ जागृत हुई, मतलब ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है ना, ये कृपा हमको इस रूप में समझना चाहिए हमको इस बात को। तो वृंदावन जो है कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, पहले इस बात को मानना चाहिए। इसका एक्चुअली हमारे जितने भी षट गोस्वामी आचार्य हैं और भी जितने भी आचार्य लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टीका लिखा हुआ है कि वृंदावन की महिमा के बारे में, तो उसमें से अब उपदेशामृत का ग्रंथ आपने सुना ही होगा, उपदेशामृत जो कि हमारा एक छोटे ग्रंथ है, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है उपदेशामृत, उसमें एक टोटल 11 श्लोक है और वो 11 श्लोक रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। रूप गोस्वामी पाद ने उन 11 श्लोकों को लिखा है उपदेशामृत। कभी भी आप खोल के पढ़ेंगे ना, अभी भक्ति शास्त्र जो कर रहे हैं उनको पढ़ाया जाएगा, वो पहला श्लोक है। तो रूप गोस्वामी पाद ने उसमें जो है उपदेशामृत में ना वैधि भक्ति से लेके प्रेमा भक्ति तक उन 11 श्लोकों में टोटल वर्णन है। एक साधक भक्त का किस दौर से गुजरता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता जाता है उसकी भक्ति, किस प्रकार से वो भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करता है, उन 11 श्लोक में उन्होंने सब कुछ वर्णन कर दिया है। तो उसमें जब वो इधर ये वृंदावन धाम का, इस ब्रज धाम का जब वर्णन करते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, क्योंकि भक्ति का जैसे ही प्रगति होता है, धीरे धीरे प्रगति होता है, उसी प्रकार से वो समय काल के अनुसार, प्रगति के अनुसार हमारा जो रुचि है ना उन श्रेष्ठ चीज़ों में बढ़ती जाता है ना। तो जब धीरे धीरे वो वृंदावन की, जब ब्रज की के बारे में बताना चालू किए रूप गोस्वामी पाद, तो उन्होंने एक श्लोक को वहाँ पर बताते हैं, मतलब यह है श्लोक 9 श्लोक है, ये 9 श्लोक है उपदेशामृत का। उसमें 9 श्लोक में कहते हैं कि बैकुंठा वरितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रागवि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लवनात् कुर्या दस्य विदा जटो गिरटते सेवा विवेकी नहका। तो इस ये श्लोक को उच्चारण करते विशेष करके रूप गोस्वामी पाद इस बात को बताते हैं कि बैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, जो आध्यात्मिक में जगत में बैकुंठ है जहाँ पे भगवान विष्णु निवास करते हैं, उस आध्यात्मिक जगत में जो बैकुंठ हो उस बैकुंठ से भी श्रेष्ठ, बैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, उस बैकुंठ से आध्यात्मिक जगत में जो बैकुंठ है उससे भी श्रेष्ठ है यहाँ का मधुपुरी अर्थात मथुरा। आप लोग स्टेशन पर उतरे ना मथुरा, उस स्थान को बैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताया गया है मथुरा को। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहाँ पे जन्म लिया था, है ना, मथुरा के कारागृह में ही, कंस के इधर कारागृह में भगवान जन्म हुए थे। इसलिए इस भौम जगत में, इस भौम जिसको भौम वृंदावन बोलते हैं, पूरे ब्रज को भौम वृंदावन बोलते हैं, तो इस भौम वृंदावन, भौम ब्रज में जो मथुरा स्थित है वो किससे श्रेष्ठ है? बैकुंठ, जो आध्यात्मिक जगत में बैकुंठ है उससे भी श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इस ब्रज धाम में निवास कर रहा है वह साक्षात आध्यात्मिक लोक में निवास कर रहा है। उसको ब्रज, एक्चुअली जो ब्रजवासी होते हैं ना, कभी भी ये नहीं कामना करते कि भगवान हमको अपने धाम में बुलाइए, क्योंकि ऑलरेडी वो धाम में हैं, इसलिए वो ये कामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको यही हो, जन्म जन्म उनको यही रहना है। क्यों? क्योंकि ये एक आध्यात्मिक जगत है, कोई भौतिक जगत है, ये भौतिक, पूरे भौतिक जगत का एक उसमें से एक पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत है जिसको भौम वृंदावन बोलते हैं। ये पूरा ब्रज धाम जो है 84 कोस का, ये भौम वृंदावन इसको बोलते हैं और ये आध्यात्मिक जगत का एक पार्ट है, ये भौतिक जगत में है नहीं, 84 कोस पूरा टोटल जो ब्रज है वो 84 कोस में स्थित है। 84 कोस मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर होता है। तो तो टोटल 84 कोस है इंटू 3, तो इतना किलोमीटर में ये पूरा ब्रज धाम बसा हुआ है। ये जो पूरा ब्रज धाम है ये आध्यात्मिक जगत है। तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि बैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, मतलब बैकुंठ से भी श्रेष्ठ कौन सा है, इस भौम वृंदावन में जो मथुरा है मधुपुरी वह श्रेष्ठ है ना। और इस मथुरा से भी श्रेष्ठ बताते हैं कि मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदारण्य मुदार पाणि रमरात, कि वृंदावन इस मथुरा से भी श्रेष्ठ कौन सा जगह है, वृंदावन। ये जो हम इस समय वृंदावन में निवास है इस समय हम लोग, तो वृंदावन जो है मथुरा से भी श्रेष्ठ है। और इसके बाद और इस वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है, और उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ बताते हैं कि राधा कुंड मिहाब गोकुल पते प्रेमा मृताप्लावना, कि इस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन के पाद मूल में जो स्थित राधा कुंड और श्याम कुंड है, इस गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो राधा कुंड है, जो श्रीमती राधा और कृष्ण का, राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो तरल रूप में बह रहा है राधा कुंड में, उनका जो प्रेम है ना वो तरल रूप में बह रहा है। तो साथ वो प्रेम है जो जल है राधा कुंड का ना, वो राधा कृष्ण का प्रेम है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद इस बात को बताते हैं यहाँ पे कि प्रेमा मृताप लावना, तो पूरा प्रेम से राधा कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ वो कुंड है, और ये जो है गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। और इस बात को बताते हैं रूप गोस्वामी पाद कि भला कौन संसार में ऐसा व्यक्ति होगा जो ये गोवर्धन में नहीं जाना चाहेगा या फिर इस ब्रज धाम में नहीं आना चाहेगा। तो इस प्रकार से ये महिमा बताते हुए बताते हैं वैकुंठ जो आध्यात्मिक जगत में उससे श्रेष्ठ कौन सा है, इस भौम जगत में जो है वो मथुरा सर्वश्रेष्ठ है, मथुरा से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से भी सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन है, और गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड है। और ऐसे जगह का रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हुए बोलते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति नहीं होगा जो इस राधा कुंड के जल को वो पान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो उसकी साथ साथ श्रीमती राधा रानी का राधा कृष्ण का प्रेम जो है तरल रूप में भरा है। तो ये रूप गोस्वामी पाद इस बात को बताते हैं। तो एक जो कहने का तात्पर्य यही है कि वृंदावन जो है भगवान से अभिन्न है, वृंदावन भगवान में कोई अंतर नहीं है, और ये एक आध्यात्मिक जगत ही है। हमको यहाँ पे आए मतलब हम समझ लीजिए कि हम आध्यात्मिक जगत में आए ऐसा है। और ये केवल इसलिए इसमें केवल प्रवेश केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही मिलता है। हम यहाँ पे बैठे हैं मतलब हम 101% राधा रानी की कृपा है, नहीं तो आ ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से और वृंदावन में हम आज लोग ये परिक्रमा कर रहे हैं, और आप लोग का विशेषता यह है कि आप लोग अकेले आए हैं पत्नी के साथ आते तो बहुत सारा और दूसरा भी क्रियाकाल चलता है, बट अच्छा है कि आप लोग अकेले आए, आना चाहिए पत्नी के साथ भी आना चाहिए, बट ज़्यादा ज़्यादा आनंद और ज़्यादा मतलब अभी कैसा सोचा आपने, रूम में भी नहीं गया बैठ के आप लोग ने जब किया, ये सब पॉसिबल नहीं रहता तभी। तो ये विशेष कृपा है लेकिन ये विशेष कृपा है। तो हम इस समय वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा में हम लोग कालियाधर के पास आए हुए हैं। भगवान कृष्ण ने आपने उस लीला को स्मरण करिए यहाँ पे कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से यहाँ पे कालियाँ जो कि इस यमुना में प्रवेश किया था, जो कि पूरा विषैला बना दिया था जल को, ये किस प्रकार से ब्रजवासियों का इस कालिया का जो दह था मतलब कालियों का जो तकलीफ था जो दे रहा था लोगों को, उससे मुक्ति दिया था भगवान ने कृष्ण ने। लेकिन हमको हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी लीला भगवान ने कृष्ण की ने किया है, तो लीला के साथ साथ में हम भक्तों को उस लीला से सीख क्या मिलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए लीला हम कहेंगे थोड़ा आनंद आएगा और सारी चीज़ें करके वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे जो भगवान क्या बताना चाहते थे उस लीला को प्रकटित करके, या किसी भगवान ने किसी भी असुर को मारा या कोई भी लीला भगवान ने किया, किसी भी प्रकार का कोई भी घटना है जो भी भगवान ने किया, कोई भी लीला किया, उस लीला से हमेशा ये हमारे माइंड में चलना चाहिए, जो एक भक्त है उसके माइंड में ये चलना चाहिए कि उस लीला से हमको सीख क्या मिलता है। तो ये कालियाधर का लीला से संबंधित और एक दो कथाएं हैं जो कि हम करेंगे फिर आगे चलेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे सौवरी मुनि, सौवरी ऋषि अपना नाम सुना होगा, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे सौवरी मुनि है ना, उस सौवरी मुनि का यहीं पे आश्रम रहा किया करता था। अच्छा एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में भगवान कृष्ण जब लीला करके यहाँ से जब गए अपने धनाधाम में, यहाँ से चले गए जब भगवान कृष्ण, तो उस समय वृंदावन प्रायः लुप्त तो हो चुका था। पूरा ब्रज जो है ना, जितने भी लीला स्थलीय आज दिख रहा है, ये प्रायः लुप्त तो हो चुका था। भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात वो सारी लीला स्थलियाँ सब लुप्त तो हो चुका था।
अच्छा।
तो फिर क्या भगवान के पपुत्र जिनका नाम वज्रनाभ, उन्होंने विचार किया कि भगवान कृष्ण अभी यहाँ से चले गए तो उनकी जो लीला स्थलियाँ उसको पुनः जागृत किया जाए, ताकि उनके जो भक्त हैं उन लीला स्थलियों पर जाकर अपना भक्ति का वर्धन कर सके। तो इस प्रकार से वज्रनाभ ने इच्छा किया था। भगवान के पपुत्र, भगवान के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र ये वज्रनाभ जी थे, जिन्होंने 5000 वर्ष पहले इस ब्रज धाम को पुनः प्रकटित कराया। वज्रनाभ ने पुनः प्रकटित कराया, लेकिन उसके बाद भी, उनके प्रकटित कराने के बाद भी ये धीरे 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 फिर से लुप्त हुआ। तो लुप्त हुआ जब ही ना, तो आज से 500 वर्ष पहले फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, इन सर्ट गोस्वामियों को यही आदेश दिया कि जाके वृंदावन को वापस प्रकटित करो। तो ये जो छह गोस्वामी थे ना, हाँ, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो हमारे सर्ट गोस्वामी है, जो अल्टर में हमारे छह गोस्वामी रहे, इन छह गोस्वामियों की ही कृपा है जो कि वृंदावन आजम को दिख रहा है। फिर से उन्होंने उजागर किया। वो अलग अलग जगह पे, जैसे राधा कुंड पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से प्रकट किया हम वहाँ पे सुनेंगे। तो ये जो है वज्रनाभ ने किया, उसके बाद में सर्ट गोस्वामी ने किया, है ना। उन दोनों की कृपा है जो कि वृंदावन आज हम उन असलियों को देख पा रहे हैं। तो ये अभी अभी हम कालियादेव पे बैठे हैं, इसलिए इसके रिलेटेड जो कथाएं हैं वो जानेंगे। तो यहाँ पे सौबरी मुनि का आश्रम हुआ करता था। सौबरी मुनि जो कि जितेंद्रिय थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, और वो यहाँ पे तपस्या करते थे। उनका आश्रम था, वो यहाँ पे तपस्या करते थे। और वो तपस्या कैसे करते थे पता है? यमुना के अंदर जाके तपस्या करते थे बैठ के, क्योंकि वो सिद्ध ऋषि थे। और वो एक्चुअली में जो मुक्त पुरुष होते हैं ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो हमेशा भौतिक जो क्रियाकलाप है, भौतिक लोगों से और इन सब से दूर रह के भजन करते हैं एक्चुअली। जैसे कि बंसीदास बाबाजी महाराज, है ना, जगन्नाथ बाबाजी महाराज, उन्होंने क्या किया, बाथरूम में बैठ के जब करते थे। क्यों? क्योंकि बाथरूम में कोई आएगा नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं तो फिर कोई संत महात्मा है, कोई भी आके प्रणाम करता है, बैठता है, कुछ प्रश्न पूछता है, उनका पैर चुनता है। तो ये सारे चीज जो मुक्त आत्माएं हैं वो हमेशा दूर रहना चाहते हैं इन सब चीजों, ताकि उनको कोई भजन करने में डिस्टर्ब ना हो। ये भजनानंदी होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमको भजनानंदी बनने के लिए मना किया है। भजनानंदी मत बनो, है ना, गोष्ठानंदी बनो। गोष्ठ में बैठ के कीर्तन प्रवचन करो। भजनानंदी आज के युग में भजनानंदी करोगे तो हो जाओगे, और क्या करोगे पता नहीं, अकेले भजन नहीं होने वाला है। इसलिए गोष्ठानंदी बनो, प्रभुबाजी ने हमको इंस्ट्रक्शन है प्रभुबाजी का। तो जितने भी ऋषि मुनि कहाँ रहते थे ना, वो हमेशा एकांत में भजन किया करते थे। तो सौबरी मुनि भी यहीं पे आश्रम था उनका, और वो यमुना के अंदर जाके वो भजन करते थे, ताकि किसी का डिस्टर्बेंस ना हो। अभी यमुना के अंदर कौन डिस्टर्ब करने गया है, तो वहाँ पर भजन करते थे। तो एक दिन की घटना है कि यमुना के ऊपर से गरुड़ जी जा रहे थे। गरुड़ जी जो कि भगवान के वाहन हैं और भगवान के महान भक्त हैं गरुड़ जी, और वहाँ से जा रहे थे, उनको भूख लगा। अभी गरुड़ जो कि भूख लगा, तो गरुड़ जी का क्या भोजन है? सर्प है, मछली है, यही भोजन है उनका, और दूसरा कोई भोजन तो है नहीं। तो उनको जैसे ही भूख लगा, वो तुरंत ही यहाँ पे यमुना के अंदर डुबकी मारे और कुछ मछलियों को खा के वापस चले गए। तो हुआ क्या, उन मछलियों में से मछलियों ने एक मीटिंग किया कि इस प्रकार से कभी भी आके गरुड़ जी हमको हमारे बीच में से किसी न किसी को खा के चले जाते हैं। तो उन लोगों ने मीटिंग किया, और उन्होंने एक झुंड पूरा सारे मछलियां मिलके वो सौबरी मुनि का शरण को ग्रहण किया, क्योंकि वो अंदर ही थे उनके, क्योंकि उनको पता चला कि एक ऋषि मुनि जो कि यहाँ पर तपस्या कर रहा है, और उनके शरण ग्रहण किया और त्राई मैम बोले कि हमारे इस प्रकार से ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो सौबरी मुनि ने क्या किया कि तुरंत ही वो, क्योंकि वो शरणागत हुए वो लोग, और तुरंत ही वो शरणागत के ऊपर उनको कृपा करने का ये जो आया, उन्होंने बोला कि ठीक है, आज से तुम लोग को कोई नहीं खाएगा। अगर इस यमुना के किनारे से अगर ऊपर से कोई भी तुम लोग खाने के उद्देश्य से अगर गुजरेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। ये श्राप कौन दे दिया? सौबरी मुनि ने। और विशेष करके गरुड़ जी के लिए था, क्योंकि गरुड़ जी खा के गए थे और गरुड़ जी कौन है, भगवान के एक महान भक्त हैं। तो सौबरी मुनि से क्या हुआ, एक महान भक्त के प्रति भयंकर अपराध हो गया। उन्होंने कुछ मछलियों की रक्षा के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए क्या किया, वैष्णव अपराध किया है ना। तो अभी देखिए, वैष्णव अपराध जो है ना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस वैष्णव अपराध को पागल हाथी के समान तुलना करते हैं कि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, इस प्रकार का चैतन्य चरिता में इसमें श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये पागल हाथी के समान है। पागल हाथी क्या करता है, अगर पागल हाथी को आप किसी गार्डन में छोड़ दे तो क्या करेगा, पूरा तहस नहस कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसी प्रकार उस गार्डन का जो तुलना करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, हमारे जो अंदर भक्ति रूपी बीज जो अंकुरित हो रहा है ना, वो गार्डन है। और उस गार्डन में अगर पागल हाथी चला जाता हूँ,
सब
अंकुरित ही हुआ और खत्म।
तो
ये वैष्णव अपराध जो है ना, ये पागल हाथी के समान बताते हैं। अगर कोई वैष्णव भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है, साथ साथ में किसी भक्त को आदर नहीं दे रहा है, और इस प्रकार से अगर अपराध कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में एक्चुअली ना, पाप कोई मायने नहीं रखता है। हम भक्त बने ना, पाप हमारे जीवन में, क्योंकि हम पाप नहीं करते हैं, है ना, पाप नहीं भी करते हैं। और मान लो कभी कभी पाप होता है जो है ना, वो हमारे इन भक्ति, जितना भी थोड़ा बहुत भी भक्ति कर रहे हैं ना, उससे सब नष्ट हो जाता है, पाप यूं नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक कृष्ण नाम जो है ना, हजारों लाखों पाप को यूं नष्ट कर देता है, कोई भी कैसे भी उच्चारण करे, ये हरि नाम की महिमा है। तो हम तो बहुत उच्चारण करते हैं, तो पाप का तो सवाल ही नहीं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में एक ही सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ है जो हमारे भक्ति को रोदन करने वाला है, वह वैष्णव अपराध। इसलिए इस वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अभी देखिए, सौबरी मुनि ने क्या किया, कुछ मछलियों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी को साप दे दिया कि वापस इस यमुना के तट से अगर गुजरेंगे तो भस्म हो जाएंगे। तो ये महान घोर और भगवान के शुद्ध भक्त है गरुड़ जी, और उनके वाहन है, उनके प्रति अपराध होने के कारण क्या हुआ, तुरंत सौबरी मुनि के का माइंड जो है विचलित होने लगा। अभी वो अंदर तपस्या कर रहे थे, अब विचलित कैसे हो गया, जिन मछलियों को उन्होंने बचाया था, उन्हीं मछलियों में से एक नर और एक मादा मछली जो कि आपस में संभोग कर रहे थे, इस दृश्य को सौबरी मुनि ने देखा अपने आंखों से, और तुरंत ही उनके अंदर काम वासना चालू होने लगा। और एक केवल वैष्णव अपराध, एक्चुअली में सौबरी ऋषि सौबरी मुनि जो है एक उच्च कोटि के जितेंद्र थे, लेकिन फिर भी एक शुद्ध भक्त को ना भगवान इस प्रकार से उसका पतन करा के ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि वैष्णव अपराध से सावधान रहो। हालांकि सौबरी मुनि का फिर पतन हुआ, लेकिन बाद में फिर से वो ऋषि बन गए, क्योंकि वो भगवान की एक प्लानिंग था। भगवान उस लीला से हमको ये सिखाना चाहते हैं कि हमको अपराध नहीं करना है। तो सौबरी मुनि ने क्या किया, गरुड़ देव के प्रति अपराध किया, अपराध के कारण ये दृश्य को देखकर तुरंत उनके अंदर काम वासना जाओ और बाहर यमुना से बाहर निकले, और तुरंत यहाँ का जो राजा मानदाता करके थे, राजा मानदाता उनके पास गए और बोले कि हमको शादी करना है, उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। अभी राजा बहुत सोचने लगा, अरे ऋषि है, एकदम बूढ़े हो गए, दाढ़ी बाल पक गया है, कभी मर जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है, और शादी करने का बोल रहे हैं तो, और किससे शादी, उनकी राजा की पुत्री से ही शादी करना है। और राजा को ही जाके बोला आपकी पुत्री से मुझे शादी करना है। तो राजा सोचने लगा, राजा की 50 पुत्रियाँ थी, तो राजा सोचने लगे कि अभी कैसे मैं इस ऋषि को, अगर मना कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि श्राप दे देगा ऋषि, है ना, कहते ना जब ये कौन सा है श्लोक भगवद्गीता का, कि जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है, कामेश क्रोध, नहीं नहीं ये भी नहीं है, विषय विनिवर्तन
संगात,
हाँ संजात संजात काम,
हाँ
तो अगर किसी भी चीज की इच्छा हुआ ना, तो उस इच्छा का पूर्ति जब नहीं होता है ना, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है ना। देखिए नेचुरल है बात, इच्छा की पूर्ति नहीं हुआ तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जो होता है ना, वो बुद्धि को भस्म कर देता है, भ्रष्ट कर देता है,
स्मृति विभ्रम,
हाँ स्मृति को विभ्रमित कर देता है, मतलब व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है। तो ये जो इच्छा की न पूर्ति होने से, तो ये राजा जानता था अच्छी तरह से, अगर ऋषि ने हमारे मतलब इच्छा व्यक्त किया कि शादी करना है मेरी पुत्री से, अगर मैं मना किया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इस बात को जानते हुए राजा बुद्धिमान था, उसने क्या बोला कि हे ऋषिवर, निश्चित रूप से हमारी बेटियों से आप शादी करिए, बट मैं चाहता हूँ कि 50 में से कौन आपकी पसंद करे, आप जाके आप स्वयं से चुनाव कर लीजिए कौन आपको पसंद कर रही है। तो सबरी मुनि कम बुद्धिमान थोड़ी ना थे, वो भी समझ गए राजा ने चालाकी किया, वो समझ गए कि मेरा शरीर जर्जर है, कौन मेरे से शादी करेगा, अब एकदम बूढ़ा हूँ इस प्रकार का। तो उन्होंने क्या किया कि पहले लड़कियों से नहीं मिलने गए, उन्होंने जाके फिर से तपस्या किया, तपस्या करके एकदम नव यौवन शरीर को प्राप्त कर लिया, सबसे सुंदर एक बालक शरीर को प्राप्त किया। वापस आए, वापस आए तो उनकी 50 पुत्रियाँ उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई और वो सौभरी मुनि ने राजा मान जाता कि 50 कन्याओं से शादी कर लिया,
50
कन्या से शादी किया। और ये एक वैष्णव अपराध का फल, हालांकि बाद में वो फिर से ऋषि बने फिर से, लेकिन यहाँ पे सीख लेने वाली जो बात यही है कि वो तो एक शुद्ध भक्त थे, भगवान की एक योजना के अनुसार इस प्रकार के एक घटित हुआ उनके साथ घटना। ऐसे ही राजा जड़ भरत जो कि एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन जड़ भरत को भी भगवान ने इस प्रकार का ऐसा हमको शिक्षा दी है। तो शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं एक शुद्ध भक्तों के जीवन में। तो फिर उसके बाद ये सौभरी मुनि अपराध का फल ये निकला कि इस प्रकार का उनका पतन हो गया। और उसके बाद मैं ये लीला यहाँ के लीला से संबंधित है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ के लीला से ही संबंधित है। तो अभी देखिए, सौभरी मुनि ने क्या किया, मछलियों के रक्षा के लिए वैष्णव अपराध किया। अभी उस वैष्णव अपराध के कारण, वैष्णव अपराध उनको भी लगा और उन साथ साथ में उन मछलियों को भी लगा, एक्चुअली वैष्णव अपराध किस रूप में उनको लगा कि अभी देखिए, कालिया जो नाग था ना, उनकी सह पत्नियों, उनके बहुत सारे पत्नियाँ थी कालिया नाग के, वो सब पत्नी सहित समुद्र के अंदर रमणक द्वीप है वहाँ पे निवास करता था कालिया, वहाँ पे निवास करता था वो रमणक द्वीप जो है ना, वो सर्पों का द्वीप है, वहाँ पे हर एक प्रकार के सर्प लोग रहते हैं, उनका घर है सर्पों का, तो वहाँ रमणक द्वीप में। तो ये कालिया जो था ना, ये बहुत शक्तिशाली था, उन सर्पों में राजा था एक्चुअली कालिया, ये अपने उसकी बहुत सारी पत्नियाँ थी और वहाँ पे वो भी निवास करता था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि गरुण के साथ, गरुण कभी भी आके सर्पों को किसी को भी खा लेते थे, तो क्या हुआ था उन लोगों ने प्लान, क्योंकि गरुण का तो आहार वही है, तो उन लोगों ने क्या किया था, एक प्लान बनाया था कि साल में एक परिवार से एक व्यक्ति गरुड़ का भोजन बनेगा, तो इस प्रकार का रूटिंग होगा। तो कभी भी एक लोग का नंबर जो बहुत दिनों के बाद आएगा, बहुत कई सालों के बाद आएगा नंबर, ऐसे क्या होता था कभी कभी गरुड़ जी एक परिवार में खाए और फिर से वापस आता तो उसी परिवार के किसी को उठा के ले जाते थे, ऐसा है। तो फिर उन लोगों ने इस प्रकार का प्लान बनाया कि इस प्रकार से कई सालों के बाद एक व्यक्ति का नंबर आएगा, उसके परिवार से कोई एक जाएगा, वो भी कौन, तब तक कोई बूढ़ा हुआ गया रहेगा, बूढ़ा व्यक्ति जाएगा, ऐसा उनका आहार बनेगा। तो अभी नंबर आ रहा था कालिया का,
अच्छा अच्छा अच्छा,
तो कालिया का नंबर आया था, उसी नंबर जब आने वाला था उसका, ये बात कालिया को पता था और वो अपने पत्नी बच्चों से इतना आसक्त था कालिया कि उनको कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने कुछ न कुछ इसका उपाय निकाल रहा था, ढूंढ रहा था क्या उपाय है, कहाँ गरुड़ से कैसे बचा जाए। तब उसको याद आया कि सौभरी ऋषि का श्राप यमुना के पास है, यमुना में है कि यमुना में जो अगर वापस गरुड़ आएगा तो भस्म हो जाएगा।
अच्छा,
तो इस घटना को जैसे ही उसने जाना, तुरंत क्या हुआ, अपने सब परिवार सहित उठ के यमुना में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गरुड़ का भय ही नहीं, यहाँ गरुड़ आए ही नहीं सकते, ये पता चला उसको। अभी देखिए, मछलियों को वैष्णव अपराध, उन्होंने क्या किया, एक मछली को जाने से सौभरी मुनि का शरण ग्रहण किया और अपने आप को सोचा कि अभी हम बच गए क्योंकि गरुण नहीं आएंगे। अभी इधर क्या हुआ, वैष्णव अपराध के कारण क्या हुआ, वैष्णव अपराध के कारण एक जो भगवान का भक्त था उसको अपनाए नहीं, उस अपराध के कारण क्या हुआ कि कालिया जो आके यमुना में रहने लगा, और कालिया के आने से जैसे ही यहाँ पे आया, उसके विष के प्रभाव से यमुना में जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी, सब कुछ भस्म हो गए, सब खत्म हो गए, केवल यहाँ के ही नहीं, पूरा यमुना विषैला बन गया, जिसके कारण पूरा सत्यानाश, कोई भी जीव जंतु यमुना में बचे ही नहीं। ये वैष्णव अपराध का फल है। तो इसलिए आचार्य गण कहते हैं कि अगर हम एक वैष्णव, एक भक्त को अगर अपना नहीं बना रहे हैं, तो निश्चित अपने हृदय में नहीं ला रहे हैं एक भक्त को, एक जो भक्त है, तो निश्चित रूप से कालिये जैसा असुर आके हमारे हृदय में बैठेगा और हमारा नाश कर देगा। तो इसलिए एक भक्त को हमेशा अपने हृदय में बैठाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त है जो हमको उनका हमेशा स्मरण करना चाहिए, हाँ इस प्रकार से उनको अपने पास रहना ताकि ये वैष्णव अपराध कभी नहीं हो। तो इस प्रकार से वैष्णव अपराध के कारण कालिया यमुना में आ गया और वो सारे मछलियाँ सब कुछ सारे जीव जंतु खत्म हो गए। तो अभी कालिया का इतना बड़ा प्रभाव था, एक्चुअली वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक्चुअली में जो सर्प होते हैं ना वो दुष्ट प्रवृत्ति के ही होते हैं, इसलिए आचार्य गण कहते हैं ना कि अगर सर्पों को देखना चाहिए तो तुरंत मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या भरी जाती है, विशेष करके जहाँ आश्रम है जहाँ पे साधु संत निवास करते हैं अगर वहाँ पे किसी सर्प को देखा जाए तो उसको तुरंत मार देना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस बात को बताया कि तुरंत खत्म कर देना है, क्योंकि अन्ना से ही किसी भक्तों को डस लेंगे। तो उनके अंदर इंसान बनाता है, किसी को भी डस लेते हैं, उसके कोई रीजन नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। तो और ये तो राजा था, ये जो कालिया था ये तो राजा था, सर्पों का राजा था। इसके अंदर तो विष इतना भरा हुआ था, उसके प्रभाव से पूरा यमुना जितना दूर में बहती थी पूरा यमुना जो दूषित हो गया। और इतना नहीं, उसका विष का इतना बड़ा भयंकर प्रभाव था ना कि यमुना के किनारे जितने भी पेड़ पौधे थे सब कुछ जल कर राख हो गए। उसके इतना तेज था, सब एकदम जल के भस्म हो गए। तभी एक प्रश्न उठता है कि ये पेड़ क्यों बचा है, सब भस्म हो गया तो ये पेड़ कदम का वृक्ष का ये पेड़ कैसे बचा। लीला के दृष्टिकोण से अगर सोचे तो भगवान को लीला करना था इसलिए बचा, लेकिन एक तत्व हर एक चीज़ को जानने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करें, एक तो लीला के दृष्टिकोण और तत्व के दृष्टिकोण से हमारे आचार्य क्या कहते हैं उसको बारे में भी जानना चाहिए, तभी उसको हमको सत्य मानना चाहिए, नहीं तो सत्य नहीं मानना चाहिए। तत्व के दृष्टिकोण से लीला के दृष्टिकोण दोनों फिट हो रहा है ना, तभी उसको मानना चाहिए कि हाँ बराबर है ऐसा। तो एक्चुअली एक कदम का वृक्ष इसलिए बच गया क्योंकि आप लोग एक कथा जानते होंगे कि गरुड़ देव की जो माँ थी कद्रु, और उनकी जो सौतेली माँ थी उसका नाम था कद्रु और विनीता, उनकी सौतेली माँ का। तो इन दोनों कद्रु और विनीता दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ। झगड़ा के कारण क्या हुआ, कुछ तो झगड़ा होने के बाद कुछ तो शर्त लगा, उसमें पराजित हो गई कौन, गरुड़ की माँ कद्रु, गरुड़देव की माँ कद्रु जो पराजित हो गई। तो विनीता ने क्या किया, तुम हमारा ये शर्त था अगर पराजित हो गई तो तुम्हारा दासत्व को स्वीकार करोगी, तुम मेरी सेवा करोगी। विनीता का इस प्रकार से, क्योंकि दोनों क्या बोलते हैं वो सौतेली माँ थी और गरुड़ कद्रु जो गरुड़ की माँ था, हाँ सौतन देव। तो उसने कहा तुम्हारा दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कद्रु हार गई तो तब से उसके दासी के रूप में रह रही थी। और विनीता का जो पुत्र है कौन है, ए कालिया ये विनीता का पुत्र है। कद्रु का
सौतेले भाई है।
कद्रु का पुत्र कौन है,
गरुड़।
तो अभी ये सहन नहीं हो रहा था गरुड़ से कि मेरी माँ उसकी दासी बन के रह रही है, एक बिल्कुल गरुड़ से सहन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक बार विनीता के पास गए, बोले कि मेरी माँ तुम्हारी दासी रहे मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, तो बोलो कुछ इसका उपाय, बोलो क्या करना है जिससे मेरी माँ को दासत्व से तुम मुक्त कर दोगे। तो विनीता बोले कि एक काम करो, तुम जाके स्वर्ग लोक से अगर मुझे अमृत ला के दोगे ना तो मैं तुमको तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी दासत्व से। तो गरुड़ जी बोले ठीक है मैं अमृत ला के देता हूँ, चलो तुरंत गए स्वर्ग लोग गए और जाके तुरंत इंद्र के पास है, मेरे को अमृत चाहिए, कौन मना करेगा। गरुड़ देव की महिमा जितनी और जो जानता रहेगा कभी मना ही नहीं कर सकता उनको, क्योंकि महान भक्त है भगवान के। और तुरंत ही उन्होंने अमृत का वो जो कलश स्वर्ग लोक से लेके कहाँ पे जा रहे थे तो लेके जा रहे थे देने के लिए विनीता को। तो रास्ते में उनको जब थकान थोड़ा महसूस हुआ तो इसी पेड़ के ऊपर वो बैठे अमृत का घड़ा लेके, तो अमृत का कुछ बूंद जो है इस पेड़ के ऊपर पड़ गया जिसके कारण ये कालिया के प्रभाव से ये भस्म नहीं हुआ है।
अकेला पेड़ है,
ये अकेला पेड़ है, इसलिए ये सबसे प्राचीन पेड़ है एक्चुअली, इसलिए बच गया ये पेड़। तो इसका कालिया का प्रभाव बिल्कुल नहीं हुआ इस पेड़ के ऊपर। और फिर तो लीला जानते ही आप लोग कि किस प्रकार से अभी पूरा ब्रज जो है एकदम भयंकर तापों में डूब गया था, क्योंकि लोगों का जीवन था यमुना ना, वहाँ से पानी लोगों के घरों तक जाता था, खेती हुआ करता था, सब कुछ नष्ट हुआ ना, सब कुछ खत्म, ब्रजवासियों तो एकदम पागल हो गए। तो इनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने एक प्लान बनाया। तो खेलते खेलते जिस प्रकार से कथा जानते कि वो ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते खेलते वो यमुना के तट पे गए और अचानक उनके ही इच्छा से सब हो रहा था, बाल वो गेंद जो है यमुना में चला गया, जो उनके ग्वाल बाल मित्र थे वो वो कहने लगे कि हमारा बॉल ला के दो, बॉल ला के दो, बॉल ला के दो। कृष्ण ने इसी कदम ब्रिज के ऊपर चढ़े और यहाँ से ही उन्होंने छलांग लगाया था, लगा के किस प्रकार से उन्होंने नागिया जो कालिया नाग था उसका दहन किया। एक्चुअली कालिया नाग का जो उन्होंने एक्चुअली उसके साथ बहुत घमासान युद्ध हुआ, ये सब देखे होंगे आप लोग, बहुत घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद एक्चुअली में कालिया के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई, भगवान की विशेष कृपा हुई कालिया के ऊपर। वो कृपा न उनकी पत्नियों के कारण हुआ, क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थी ना उन्होंने भगवान को बहुत सुंदर तरीके से उनको स्तुति किया उन्होंने भगवान को, इसलिए भागवतम में इन कालिया के नाग के पत्नियों के द्वारा जो स्तुतियां ना भागवतम में वर्णित है। इन स्तुतियों को जो पढ़ेगा ना उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे, तभी उनकी उनके क्योंकि उनकी पत्नियों ने देख लिया कि ये तो मरने वाला है, मेरा पति है तो जाने, अभी तो खाए गया, कृष्ण मार देंगे इनको। तो फिर उन्होंने सब मिलकर उनके शरण ग्रहण किया और कृष्ण की स्तुति की। उनके स्थितियों के ही वजह से भगवान कृष्ण ने कालिया के ऊपर कृपा किया है ना। और ये नाग पत्नियां जो है कृष्ण की महान भक्त थी, कृष्ण की महान भक्त है, इसलिए एक भक्त जब न कृपा करता है तभी भगवान की कृपा होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान की सबसे उच्च कोटि की भक्ता है, है ना, उच्च कोटि की भक्ता है श्रीमती राधा रानी। तो वो हमारे ऊपर कृपा करते तब हम वृंदावन में आते हैं। तो एक शुद्ध भक्त का जब तक कृपा नहीं होता है ना तब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं हो सकता है। एक भक्त के ही कृपा से भगवान में प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति में हम लगते हैं, नहीं तो नहीं लग सकते हैं। तो नाग पत्नियों के स्तुति से भगवान ने कालिया के ऊपर कृपा किया। जब कृपा किया तो कालिया उनको फिर ऊपर लेके आया, तो किस प्रकार से उसके ऊपर डांस भी किया भगवान ने। और उसके बाद फिर उन्होंने कालियों को ये बोला कि अभी तुम यहाँ से यमुना छोड़ो और वापस कहाँ जाओ, रमणक द्वीप में अपने घर वापस चले जाओ, और तुम चिंता मत करना, अभी तुमको गरुड़ का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर जो है ना मेरे चरण चिन्ह का निशान हो गया अभी। तब जब ये गरुड़ यह देखेगा तुम्हारे चरण सर पे चरण चिन्ह मेरा ना, तो प्रणाम करके चला जाएगा, तुमको चिंता मत करो, तुम जाओ। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों के स्तुति के कारण उनकी कृपा से ही एक कालिया नाग का रक्षा हुआ, रक्षा हुआ, और वो वापस अपने सह परिवार सहित रमणक द्वीप में वापस चला गया। तो ये जो घटना है एक्चुअली भगवान न कि जो कृपा होता है ना, जैसे कि किसी को ऊपर भी कृपा करते हैं ना, एक्चुअली भगवान एक फेमस है कि वो असुरों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। असुर जो लोग असुर है ना उनको मोक्ष प्रदान है। एक्चुअली ये भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था ना, तो जन्म के समय में गर्ग मुनि ने नाम संस्करण का विधि किया था ना, उनका दोनों कृष्ण बल नाम का नामों का ये विधान किया था। तो उस समय जब ये गर्ग ऋषि नंद महाराज के पास जब पहुँचे उनके पास नामकरण के लिए, तो उन्होंने नामकरण का जो विधि है ना वो गुप्त रूप से किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कंस खोज रहा था कि कौन, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि प्रकट हो चुका है, कहाँ प्रकट हो गया, वो खोज रहा है मारने के लिए। इसलिए जो ये विधि इसको गुप्त रूप से संपन्न किया गया, क्योंकि अगर सब खुलेआम करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा, और कंस को पता चलेगा तो बहुत सारा उपद्रव होगा। तो इसलिए उन्होंने नाम संस्करण को गुप्त रूप में रखा। तो वहाँ पे गर्ग ऋषि इस बात को गर्ग मुनि इस बात को बताते हैं कि ये जो नामकरण करते समय किसको, नंद महाराज को ये बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारा बालक है ना ये नारायण के समान है। उस श्लोक में ये भागवतम के दसम स्कंद के नवमें अध्याय में है शायद, तो कि ये जो तुम्हारा बालक है ना ये नारायण के समान है, इसलिए तुम इसका नाम मधुसूदन कृष्ण या राम या बलराम रखो। इस प्रकार से उन्होंने ये सारे नाम देते हैं। अभी गर्ग मुनि तो जानते थे ये तो साथ साथ भगवान कृष्ण ही है, तो नारायण के समान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नंद महाराज का था वो उनका पुत्र के रूप में आए थे ना, उनका वात्सल्य प्रेम था। अगर वो बोलते थे ये साथ साथ भगवान है तो उनका वात्सल्य प्रेम नहीं रहता है, क्या होता है वो भगवान के रूप में पूजने लगते हैं कि तुम्हारे घर में भगवान आया है। तो इस प्रकार से गर्ग मुनि क्या बोलते हैं कि नारायण के समान है, और उस तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं और श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर का टीका लिखते हैं उस तात्पर्य के लास्ट में। श्री विश्वनाथ चतुर्थी बोलते हैं कि हालांकि गर्ग मुनि ने क्या बोला कि यह नारायण के तुल्य है, लेकिन यह नारायण से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये असुरों के ऊपर भी कृपा करते हैं तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कि किसको, पुतना, जिसकी कोई भी असुर पुतना, और यहाँ वो सभा में किसका कहता है जो निंदा कर रहा था, शिशुपाल शिशुपाल को तो सांस छान देख रहे हैं कि शिशुपाल के को भगवान जब खाते तो उसकी जो आत्माएं भगवान के अंदर चली जाती है, सबके सामने देखते देखते हैं। तो इस प्रकार से वो असुरों को भी मोक्ष प्रदान करने में समय, इसलिए नारायण जो है नारायण से भी श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे कालिया को दमन किया। दमन क्या किया, एक्चुअली वो किसी का दमन नहीं करते भगवान, जिनके ऊपर वो उद्धार होता है, उनका कृपा होता है उनका, किसी भी असुर को देख लीजिए। तो यहाँ पे कालिया का उद्धार हुआ था। तो ये हम इस स्थान पे है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हम इससे सीख यही लेना चाहिए कि हमको कभी भी वैष्णव अपराध नहीं, ये लीला से हमको सीखना यही है कि वैष्णव अपराध हमेशा वैष्णव को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मतलब अगर हृदय में नहीं धारण किए तो कालिय नाग रूपी जैसा असुर हमारे हृदय में आके वास करेगा और हमारे भक्ति को नष्ट कर देगा।
मतलब अनजाने में भी हुई तो
हाँ,
भी
अनजाने में। ये देखिए भक्ति का जब हाँ भक्ति का कई स्टेज है, 9 स्टेज है, साधु श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया इत्यादि ना। तो जैसे ही स्टेप बढ़ता जाता है ना, उसमें अपराध का भी लेवल उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे कि अभी सूक्ष्म रूप से भी अपराध होता है, उससे भी हमको, अभी तो हम स्थूल रूप में नहीं बच पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं स्थूल रूप से बचे, सामने सामने किसी का निंदा न करे, किसी से झगड़ा न करे, लेकिन फिर भी हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। और तो लेकिन हमको सूक्ष्म अपराध से भी बचना आगे चल के। सूक्ष्म अपराध देखिए किस प्रकार का होता है, एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक बार रूप गोस्वामी पाद वो लीला का स्मरण कर रहे थे, राधा कृष्ण की लीलाओं का। तो स्मरण करते करते उन्होंने एक लीला देखा कि भगवान कृष्ण राधा रानी फूल चयन कर रही हैं। फूल चयन करते करते उन्होंने डाल को नीचे पकड़ के खींचा और फूल चयन कर रही थी, और उस डाल के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे थे, लेकिन राधा रानी को पता नहीं था। और उन्होंने खींचा था डाल, और अचानक भगवान कृष्ण पैर हटा देते हैं और डाल ऊपर जाता है और राधा रानी ऊपर चली जाती है। इस ये घटना स्मरण कर रहे थे। अभी आप लोगों ने ऐसा निश्चित रूप से रूप गोस्वामी पाद को हंसी तो आएगी। वो स्मरण करते करते लीला को हंसने लगे। जब हंसने लगे तो सामने से ना एक लंगड़ा व्यक्ति जा रहा था और उसको बहुत बुरा लग गया कि ये साधु जो है मेरे को देख के हंस रहा है, मेरा शरीर अपंग है इसलिए मेरे को देख के हंस रहा है। और जैसे ही उसने इस प्रकार का उसको कष्ट हुआ ना, ये बात रूप गोस्वामी को पता नहीं क्योंकि वो तो लीला का स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार हुआ, तुरंत ही इनका जो लीला था वो बंद हो गया दिखना। क्यों? क्योंकि अपराध हो गया, वैष्णव अपराध।
कितनी बड़ी बात है,
वैष्णव अपराध हो गया। अभी हम सोच सकते हैं ये कैसा वैष्णव अपराध, ये सूक्ष्म रूप से जो वैष्णव अपराध होता है इस प्रकार से होता है। इसका निवारण हुआ बाद में, सनातन गोस्वामी बाद में इसको उन्होंने ढूंढा कि निश्चित रूप से मुझे ऐसा कोई अपराध हो गया, कैसे लीला चली गई इस प्रकार से अचानक, मैं किसी ने किसी के प्रति अपराध किया, लेकिन खोजे किसको, वो तो चला गया, वो देखे भी नहीं वो कौन था, चला गया। तो सनातन गोस्वामी पाद के पास जब गए, बहुत क्योंकि इस प्रकार की ऐसा ऐसा सारी घटनाएं बताए, तब सनातन गोस्वामी पाद ने बोला कि एक काम करो, तुम सारे ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों में जितने भी ब्राह्मण जो भी है सबको इनवाइट करो, उनको भोजन खिलाओ और उनको दक्षिणा दो और इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न करो। तो उन्होंने सबको बुलाया और वो सबको बुलाने में वो लंगड़ा व्यक्ति भी आया और उसने भी प्रसाद ग्रहण किया, उसने भी खाया, उसको भी दक्षिणा दिया गया। तो वो तब जाके उस अपराध का क्षमत हुआ,
वो प्रसन्न हुआ।
तो इस ये सूक्ष्म अपराध से भी हमको बचना है,
न जानते हुए भी हो जाता है,
न जानते में भी होता है, उससे बचना है। तो कहने का तात्पर्य ठीक है, न जानते हुए जो होता है वो बात का स्टेज है। अभी फिलहाल हमको ये समझना है कि हमको जो स्थूल रूप से हम जान के कर रहे हैं वो हमको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए किसी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने त्रिनाद अपि सुने चेना तरोर अपि सहिष्णु बताया। क्यों बताया? हम रोज इस श्लोक को क्यों उच्चारण करते हैं? क्यों? क्योंकि इसको अपने गले में बांध के रखो इस श्लोक को। अभी बोलेंगे कि कभी कभी होता है ना, बहुत सारे घटनाएं आती, सहन करने की क्या सीमा? कोई सीमा नहीं, लास्ट तक सहन ही करना है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो एक भक्त होता है, भक्ति की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि भक्ति के अंदर ये जब गुण रहता है ना, तभी उसकी महिमा है, क्योंकि वो एक आम व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता है। तो ये जो हमेशा त्रिनादपि सुनिचे न बन के जब रहेंगे, हमेशा हर एक परिस्थिति में नम्र बन के रहेंगे, अपने आप को नम्रता पूर्वक ही रखेंगे, और तभी हम जाके वैष्णव अपराध से बच सकते हैं, है ना। कभी कोई कुछ भी होगा, क्योंकि कुछ भी परिस्थितियाँ क्रिएट तो होती है। देखिए जीवन में निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स तो आते ही है ना, तो वो प्रॉब्लम्स को ना कभी भी वो प्रॉब्लम्स हमको रमना नहीं चाहिए। रमना मीन्स जैसे कोई कुछ बोला, हमको दुख लगा तो हम उसका जवाब दे दिए, देखिए आप उसको सहन कर लेंगे ना तो आपको दूसरे दिन पता चलेगा कि मैं कितना पर उस समय नहीं पता चलता है क्योंकि उस समय तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट उसको अगर रोक लिया आपने ना तो आपको दूसरे दिन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। आप इसको अजमा के देखो,
ठीक किया।
हाँ, क्या मैंने सहन किया, ठीक किया, देखो सब ठीक हो गया। नहीं तो कभी कभी दोनों झड़ते रहते हैं और खत्म ही नहीं होता, बढ़ते ही जाता है। तो इस प्रकार का क्योंकि ये भौतिक संसार है, हमेशा समस्याएं तो हमारे साथ में लगी रहेगी। भगवान ने इस जब भौतिक संसार बनाया है ना, भगवद गीता में कहता है ना दुख खा ले हम सास होता है। जैसे एक जज होता है कुछ डिसीजन सुना देता है ना, एक मोहर मार देता है फाइनल, अभी उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत बनाया, मोहर लगाया, दुख खा ले हम सास होता हूँ, दुख खा ले हम सास होता हूँ। तब जहाँ बोलते हैं दुख खा ले हम और सास होता है, यहाँ पे जो व्यक्ति रहेगा उसको दुख ही दुख मिलेगा,
दूसरा कोई
सुख मिलेगा ही नहीं। और हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम इस दुखी जगत में हम सुख की खोज कर रहे हैं, हमारी परिस्थिति है तो हम विपरीत जा रहे हैं। विपरीत जा रहे हैं तो जो कि हमको विपरीत जाके भी कुछ मिलता तो बात की बात है, कुछ वो भी मिलने वाला नहीं है, उसमें और दुख बनने वाला है। इसलिए ये भौतिक संसार दुखालय में है, अशाश्वतम है, तो इसलिए यहाँ पे सुख है ही नहीं। इसलिए हमको बुद्धिमान बनना चाहिए कि हमको इसमें रमना नहीं है, हमको इससे बाहर निकलना है। तो फिर ये स्थान है और फिर हम यहाँ से ताजे इस लीला का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा में आगे चलते हैं।
तो जी वो राजा का नाम क्या था?
राजा मानदाता है,
मानदाता। माता का नाम कद्रु और
विनीता,
विनीता कद्रु विनीता मानदाता।
ठीक
है, जय बाबा तुम्हारा।